किए चले जाता है। आका हुक्म देता है कि चोर का हाथ काट दे। ये हुक्म सुनकर बस वहीं खड़े खड़े निहायत खुश इल्हानी के साथ चोर का हाथ काट दे, चोर का हाथ काट दे 200 मर्तबा पढ़ते रहता है, मगर एक दफा भी इस निजामे हुकूमत के खयाम की कोशिश नहीं करता जिसमें चोर का हाथ काटा जा सके। क्या आप कह सकते हैं कि ये शख्स हकीकत में आखा की बंदगी कर रहा है? अगर आपका कोई मुलाजिम ये रवैया इख्तियार करे तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप उसे क्या कहेंगे, मगर हैरत है आप पर कि खुदा का जो नौकर ऐसा करता है आप उसे बड़ा इबादत गुजार कहते हैं। ये जालिम सुबह से शाम तक खुदा जाने कितनी मर्तबा कुरान शरीफ में खुदा के अहकाम पढ़ता है, मगर इन अहकाम को बजा लाने के लिए अपनी जगह से जुम्बिश तक नहीं करता, बल्कि नफिल पे नफिल पढ़े जाता है, हजार दाने तस्बीह पर खुदा का नाम जपता है और खुश इल्हानी के साथ कुरान की तिलावत करता रहता है। आप इसकी ये हरकतें देखते हैं और कहते हैं कि कैसा जाहिद आबिद बंदा है। ये गलत फहमी सिर्फ इस वजह से है कि आप इबादत का सही मतलब नहीं जानते। एक और नौकर है जो रात दिन ड्यूटी तो गैरों की अंजाम देता है, अहकाम गैरों के सुनता है और मानता है, कानून पर गैरों के अमल करता है और अपने असली आखा के फरमान की हर वक्त खिलाफ वर्जी किया करता है, मगर सलामी के वक्त आखा के सामने हाजिर हो जाता है और जबान से आखा ही का नाम जपते रहता है। अगर आप में से किसी शख्स का नौकर ये तरीका इख्तियार करे तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसकी सलामी को इसके मुंह पर ना मार देंगे? जब वो जबान से आपको आखा और मालिक कहेगा तो क्या आप फौरन ये जवाब ना देंगे कि तू परले दर्जे का झूठा और बेईमान है, तनख्वाह मुझसे लेता है और नौकरी दूसरों की करता है, जबान से मुझे आखा कहता है और हकीकत में मेरे सिवा हर एक की खिदमत करता फिरता है? ये तो एक मामूली अकल की बात है जिसे आप में से हर शख्स समझ सकता है, मगर कैसी हैरत की बात है कि जो लोग रात दिन खुदा के कानून को तोड़ते हैं, कुफार और मुशरिकीन के अहकाम पर अमल करते हैं और अपनी जिंदगी के मामलात में खुदा के अहकाम की कोई परवाह नहीं करते, उनकी नमाज और रोज़े और तस्बीह और तिलावत कुरान और हज और ज़कात को आप खुदा की इबादत समझते हैं, ये गलत फहमी भी इसी वजह से है कि आप इबादत के असल मतलब से नावाकिफ हैं। एक और नौकर की मिसाल लीजिए। आखा ने अपने नौकरों के लिए जो वर्दी मुकर्रर की है ये ठीक नाप तोल के साथ उस वर्दी को पहनता है, बड़े अदब और ताज़ीम के साथ आखा की खिदमत में हाजिर होता है, हर हुक्म को सुनकर इस तरह झुककर बसर चश्म कहता है कि गोया इससे बढ़कर इताद गुजार खादिम कोई नहीं। सलामी के वक्त सबसे आगे जाकर खड़ा होता है और आखा का नाम जपने में तमाम नौकरों से बाजी ले जाता है, मगर दूसरी तरफ यही शख्स आखा के दुश्मनों और बागियों की खिदमत बजा लाता है, आखा के खिलाफ उनकी साजिशों में हिस्सा लेता है और आखा के नाम को दुनिया से मिटाने में जो कोशिश भी वो करते हैं उनमें ये कमबख्त उनका साथ देता है। रात के अंधेरे में तो आखा के घर में नखब लगाता है और सुबह बड़े वफादार मुलाजिमों की तरह हाथ बांधकर आखा की खिदमत में हाजिर हो जाता है। ऐसे नौकर के मुतालिक आप क्या कहेंगे? यही ना कि वो मुनाफिक है, बागी है, नमक हराम है, मगर खुदा के जो नौकर ऐसे हैं उनको आप क्या कहा करते हैं? किसी को पीर साहब और किसी को हजरत मौलाना और किसी को दीनदार मुत्तकी और इबादत गुजार। ये सिर्फ इसलिए कि आप इनके मुंह पर पूरे नाप की दाढ़ियाँ देखकर, इनके टखनों से दो दो इंच ऊंचे पैजामे देखकर, उनकी पेशानियों पर पे नमाज के गट्ठे देखकर और उनकी लंबी लंबी नमाजें और मोटी मोटी तस्बीहें देखकर समझते हैं कि बड़े दीनदार और इबादत गुजार हैं। ये गलत फहमी भी इसी वजह से है कि आपने इबादत और दीनदारी का मतलब ही गलत समझा है। आप समझते हैं कि हाथ बांध कर क़िबला रुख खड़े होना, घुटनों पर हाथ रख कर झुकना, ज़मीन पर हाथ टेक कर सजदा करना और चंद मुकर्रर अल्फाज ज़बान से अदा करना, बस यही चंद अफ़ाल और हरकात बजाय खुद इबादत हैं। आप समझते हैं कि रमज़ान की पहली तारीख से शव्वाल का चांद निकलने तक रोज़ाना सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का नाम इबादत है। आप समझते हैं कि कुरान के चंद रुकू ज़बान से पढ़ देने का नाम इबादत है। आप समझते हैं कि मक्का मौज़मा जाकर काबे के गिर्द तवाफ करने का नाम इबादत है। गर्ज आपने चंद अफ़ाल की ज़ाहरी शक्लों का नाम इबादत रख छोड़ा है और जब कोई शख्स इन शक्लों के साथ इन अफ़ाल को अदा कर देता है तो आप ख्याल करते हैं कि इसने खुदा की इबादत कर दी। और वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून का मकसद पूरा हो गया। अब वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है कि जो चाहे करे। इबादत पूरी ज़िंदगी में बंदगी, लेकिन असल हकीकत यह है कि अल्लाह ने जिस इबादत के लिए आपको पैदा किया है और जिसका आपको हुक्म दिया है वो कुछ और ही चीज़ है। वो इबादत यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हर हाल में खुदा के क़ानून की इताअत करें और हर उस क़ानून की पाबंदी से आज़ाद हो जाएं जो क़ानून इलाही के ख़िलाफ़ हो। आपकी हर जुम्बिश उस हद के अंदर हो जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर की है। आपका हर फ़ेल इस तरीक़े के मुताबिक हो जो खुदा ने बताया है। इस तर्ज पर जो ज़िंदगी आप बसर करेंगे वो पूरी की पूरी इबादत होगी। ऐसी ज़िंदगी में आपका सोना भी इबादत है और जागना भी, खाना भी इबादत है और पीना भी, चलना फिरना भी इबादत है और बात करना भी, हत्ता के अपनी बीवी के पास जाना और अपने बच्चे को प्यार करना भी इबादत है। जिन कामों को आप बिल्कुल दुनियादारी कहते हैं वो सब दीनदारी और इबादत हैं। अगर आप उनको अंजाम देने में खुदा की मुकर्रर की हुई हदों का लिहाज करें और ज़िंदगी में हर हर कदम पर ये देख कर चलें कि खुदा के नज़दीक जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या, हलाल क्या है और हराम क्या, फ़र्ज़ क्या चीज़ की गई है और मना किस चीज़ से किया गया है, किस चीज़ से खुदा खुश होता है और किस से नाराज़ होता है। मसलन आप रोज़ी कमाने के लिए निकलते हैं, इस काम में बहुत से मौक़े ऐसे भी आते हैं जिनमें हराम का माल काफ़ी आसानी के साथ आपको मिल सकता है। अगर आपने खुदा से डर कर वो माल ना लिया और सिर्फ हलाल की रोटी कमा कर लाए तो ये जितना वक्त आपने रोटी कमाने में सर्फ किया ये सब इबादत था। और ये रोटी घर लाकर जो आपने खुद खाई और अपनी बीवी बच्चों और खुदा के मुकर्रर किए हुए दूसरे हकदारों को खिलाई, इस सब पर आप अजर और सवाब के मुस्तहक हो गए। आपने अगर रास्ता चलने में कोई पत्थर या कांटा हटा दिया इस ख्याल से कि खुदा के बंदों को तकलीफ़ ना हो तो ये भी इबादत है। آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی، یا کسی اندھے کو راستہ چلایا، یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی تو